चैतन्य चरिता अमृत अंत्य लीला अध्याय 4 जगन्नाथपुरी में महाप्रभु से सनातन गोस्वामी की भेंट। जब सनातन गोस्वामी वृंदावन से लौटे तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें आत्महत्या करने के संकल्प से स्नेह पूर्वक बचाया। तत्पश्चात उनकी परीक्षा लेकर श्री चैतन्य महाप्रभु ने उनके शरीर को शुद्ध बना दिया। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय हो। श्री नित्यानंद प्रभु की जय हो। श्री अद्वैत चंद्र की जय हो तथा श्री चैतन्य महाप्रभु के समस्त भक्तों की जय हो। जब श्रील रूप गोस्वामी जगन्नाथपुरी से बंगाल लौट गए तो सनातन गोस्वामी श्री चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए मथुरा से जगन्नाथपुरी आए। सनातन गोस्वामी ने अकेले ही मध्य भारत के जारी खंड के जंगली रास्तों से होकर यात्रा की। कभी वे उपवास करते तो कभी भोजन करते। जारी खंड जंगल में खराब पानी मिलने तथा उपवास करने के कारण सनातन गोस्वामी को एक रोग हो गया जिससे उनका सारा शरीर खुजलाता रहता। इस तरह वे खुजली के घावों से पीड़ित थे जिनसे तरल पदार्थ पीप निकलता था। निराशा में सनातन गोस्वामी ने विचार किया, मैं नीच जाति का हूँ और मेरा यह शरीर भक्तिमय सेवा के लिए व्यर्थ है। जब मैं जगन्नाथपुरी जाऊंगा तो मैं न तो जगन्नाथ जी के दर्शन कर सकूंगा न ही श्री चैतन्य महाप्रभु का सर्वदा दर्शन कर पाऊंगा। मैंने सुना है कि श्री चैतन्य महाप्रभु का निवास स्थान जगन्नाथ जी के मंदिर के समीप है, किंतु मंदिर के समीप तक जाने की मुझ में शक्ति नहीं होगी। सामान्यतया भगवान जगन्नाथ के सेवक अपना अपना कार्य करने के लिए इधर उधर घूमते फिरते हैं, किंतु यदि वे मुझे छू लेंगे तो मैं अपराधी बनूंगा। इसलिए यदि मैं यह शरीर किसी अच्छे स्थान में उत्सर्ग कर दूं तो मेरा दुख दूर हो जाएगा और मुझे उच्च गति प्राप्त होगी। रथ यात्रा उत्सव के समय जब भगवान जगन्नाथ मंदिर से बाहर आते हैं तो मैं उनके रथ के पहिए के नीचे अपना शरीर छोड़ दूंगा। जगन्नाथ जी का दर्शन करने के बाद मैं श्री चैतन्य महाप्रभु की उपस्थिति में रथ के पहिए के नीचे अपना शरीर त्याग कर दूंगा। यह मेरे जीवन का सर्वोच्च वर होगा। यह निश्चय करके सनातन गोस्वामी नीलाचल गए, जहां लोगों से दिशा पूछ कर वे हरिदास ठाकुर के निवास स्थान जा पहुंचे। उन्होंने हरिदास ठाकुर के चरण कमलों की वंदना की। वे उन्हें जानते थे, अतः उन्होंने उनका आलिंगन किया। सनातन गोस्वामी श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों का दर्शन करने के लिए अत्यंत उत्सुक थे, इसलिए हरिदास ठाकुर ने कहा, महाप्रभु शीघ्र ही यहाँ आने वाले हैं। उसी समय श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ मंदिर में उपल भोग प्रातःकालीन जल पान देखकर अपने अन्य भक्तों के साथ हरिदास ठाकुर से मिलने के लिए आए। श्री चैतन्य महाप्रभु को देखकर हरिदास ठाकुर और सनातन गोस्वामी दोनों ने तुरंत दंडवत प्रणाम किया। तब महाप्रभु ने हरिदास को उठाया और गले लगाया। हरिदास ठाकुर ने श्री चैतन्य महाप्रभु से कहा, यह सनातन गोस्वामी आपको प्रणाम कर रहा है। सनातन गोस्वामी को देखकर महाप्रभु अत्यधिक चकित हुए। जब श्री चैतन्य महाप्रभु उनका आलिंगन करने आगे बढ़े तो सनातन गोस्वामी पीछे हट गए और इस प्रकार बोले, हे प्रभु, कृपया आप मेरा स्पर्श न करें, मैं आपके चरण कमलों पर पड़ता हूँ। मैं नीच जाति में उत्पन्न होने के कारण मनुष्यों में सबसे अधम हूँ। इसके अतिरिक्त मेरे शरीर में खुजली का रोग है, किंतु श्री चैतन्य महाप्रभु ने बलपूर्वक सनातन गोस्वामी का आलिंगन कर लिया। इस तरह खुजली के घावों से रिश्ता तरल प्रसाद श्री चैतन्य महाप्रभु के दिव्य शरीर में लग गया। महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी से सबका परिचय कराया और सनातन गोस्वामी ने उन सब के चरण कमलों पर सादर नमस्कार अर्पित किया। महाप्रभु तथा उनके सारे भक्त चबूतरे के ऊपर बैठ गए और हरिदास ठाकुर तथा सनातन गोस्वामी उसके नीचे बैठे। श्री चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी से उनकी कुशलता का समाचार पूछा। सनातन ने उत्तर दिया, सब कुशल हैं, क्योंकि मुझे आपके चरण कमलों के दर्शन हो गए। जब महाप्रभु ने मथुरा के समस्त वैष्णवों के विषय में पूछा तो सनातन गोस्वामी ने उनके स्वास्थ्य एवं सौभाग्य के बारे में बतलाया। श्री चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को बतलाया, श्रील रूप गोस्वामी यहाँ पर 10 महीने तक थे, वे 10 दिन पहले ही बंगाल चले गए हैं। तुम्हारा भाई अनुपम अब नहीं रहा, वह एक उत्तम भक्त था जिसका रघुनाथ भगवान रामचंद्र में दृढ़ विश्वास था। सनातन गोस्वामी ने कहा, मैं निम्न कुल में उत्पन्न हुआ क्योंकि मेरा परिवार सभी प्रकार के अधार्मिक कार्य करता है जिनसे शास्त्र के आदेशों का उल्लंघन होता है। हे प्रभु, आपने मेरे परिवार से घृणा किए बिना मुझे अपने सेवक के रूप में स्वीकार किया है। केवल आपकी कृपा से ही मेरे परिवार में मंगल ही मंगल है। मेरा छोटा भाई अनुपम अपने बचपन से ही रघुनाथ भगवान रामचंद्र का महान भक्त था और वह अत्यंत दृढ़ता से उनकी पूजा करता था। वह सदैव रघुनाथ के पवित्र नाम का कीर्तन करता था और उन्हीं का ध्यान करता था। वह निरंतर रामायण से भगवान की लीलाओं के विषय में सुनता था और उन्हीं का कीर्तन करता था। रूप तथा मैं उसके बड़े भाई हैं। वह लगातार हमारे साथ रहा। वह हमारे साथ श्रीमद् भागवत तथा कृष्ण विषयक वार्ताएं सुनता था और हम दोनों उसकी परीक्षा लिया करते थे। हम कहते, हे बल्लभ, हमसे सुनो, भगवान कृष्ण परम आकर्षक हैं, उनका सौंदर्य मधुरता तथा प्रेम की लीलाएं अनंत हैं। तुम हम दोनों के साथ कृष्ण की भक्ति में लगो, हम तीनों भाई एक साथ रहेंगे और भगवान कृष्ण की लीलाओं की चर्चा का आनंद लेंगे। इस तरह हम दोनों ने उससे बारंबार कहा और हमारे पुतलाने तथा हमारे प्रति आदर भाव से उसका मन कुछ कुछ हमारे उपदेशों की ओर मुड़ा। वल्लभ ने उत्तर दिया, हे प्रिय भ्राताओं, मैं आपके आदेशों का उल्लंघन कैसे कर सकता हूँ? मुझे कृष्ण मंत्र की दीक्षा दीजिए, जिससे मैं कृष्ण भक्ति कर सकूं। यह कहकर रात में वह सोचने लगा, मैं किस तरह भगवान रघुनाथ के चरण कमलों को छोड़ पाऊंगा। वह रात भर जागता रहा और रोता रहा। प्रातः काल वह हमारे पास आया और इस प्रकार निवेदन करने लगा, मैंने अपना सिर भगवान रामचंद्र के चरण कमलों पर बेच दिया है, मैं इसे वापस नहीं ले सकता, यह मेरे लिए अत्यधिक पीड़ादायक होगा। आप दोनों मुझ पर कृपालु हो तथा इस तरह आज्ञा दें कि मैं जन्म जन्मांतर भगवान रघुनाथ के चरण कमलों की सेवा कर सकूं। मेरे लिए भगवान रघुनाथ के चरण कमलों को छोड़ पाना असंभव है। जब मैं उनको छोड़ने के लिए सोचता भी हूँ तो मेरा हृदय विदीर्ण हो जाता है। यह सुनकर हम दोनों ने उसका आलिंगन किया और उसे यह कहकर प्रोत्साहित किया, तुम महान संत भक्त हो, क्योंकि भक्ति में तुम्हारा संकल्प दृढ़ है। इस तरह हम दोनों ने उसकी प्रशंसा की, हे प्रभु, आप जिस वंश पर लेश मात्र भी कृपा करते हैं वह सदैव भाग्यशाली होता है, क्योंकि ऐसी कृपा से सारे कष्ट लुप्त हो जाते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, ऐसी ही घटना मुरारी गुप्त के संबंध में भी है। पहले मैंने उसकी परीक्षा ली और उसका संकल्प ऐसा ही था। वह भक्त धन्य है जो अपने स्वामी की शरण नहीं छोड़ता, और वह स्वामी धन्य है जो अपने सेवक को नहीं छोड़ता। यदि संयोग वश सेवक सेवा से नीचे गिर जाता है और अन्यत्र चला जाता है तो वह स्वामी धन्य है जो उसको बालों से पकड़कर वापस लाता है। यह अच्छा हुआ कि तुम यहाँ आ गए, अब इस कमरे में हरिदास ठाकुर के साथ रहो। तुम दोनों ही कृष्ण भक्ति के रतों को समझने में दक्ष हो, इसलिए तुम दोनों को ऐसे कार्यों का तथा हरे कृष्ण महामंत्र का आस्वादन करते रहना चाहिए। यह कहकर श्री चैतन्य महाप्रभु उठे और चल दिए तथा गोविंद के द्वारा उन्होंने उनके खाने के लिए प्रसाद भेजा। इस तरह सनातन गोस्वामी श्री चैतन्य महाप्रभु की देख रेख में रहे। वे जगन्नाथ मंदिर के शिखर के चक्र को देखते तथा नमस्कार करते। श्री चैतन्य महाप्रभु प्रतिदिन इन दोनों महान भक्तों से भेंट करने जाते और कुछ काल तक उनके साथ कृष्ण कथाओं पर बातें करते। भगवान जगन्नाथ के मंदिर में प्रसाद की भेंट सर्वोच्च कोटि की होती थी। श्री चैतन्य महाप्रभु यह प्रसाद लाते और दोनों भक्तों को देते। एक दिन जब महाप्रभु उनसे मिलने आए तो वे सहसा सनातन गोस्वामी से कहने लगे। उन्होंने कहा, हे सनातन, यदि मैं आत्महत्या करके कृष्ण को पा सकूं, तो करोड़ों शरीर त्यागने में मुझे तनिक भी द्विधा नहीं होगी। तुम जान लो कि मात्र शरीर त्यागने से कोई कृष्ण को प्राप्त नहीं कर सकता। कृष्ण तो भक्ति से प्राप्य हैं, उन्हें प्राप्त करने का कोई अन्य उपाय नहीं है। आत्महत्या जैसे कर्म तमोगुण से प्रेरित होते हैं एवं तमो तथा रजोगुण में मनुष्य यह नहीं समझ सकता कि कृष्ण कौन है। जब तक कोई भक्ति संपन्न नहीं करता, तब तक वह अपने सुप्त कृष्ण प्रेम को जागृत नहीं कर सकता, और उस सुप्त प्रेम को जागृत किए बिना कृष्ण को प्राप्त करने का अन्य कोई साधन नहीं है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण ने कहा, हे उद्धव, न तो अष्टांग योग द्वारा, न निर्विशेष एकेश्वर वाद द्वारा, न सांख्य योग द्वारा, न वेदों के अध्ययन द्वारा, न तपस्या दान या संन्यास द्वारा कोई मुझे उतना तुष्ट कर सकता है जितना कि मेरी शुद्ध भक्ति विकसित करके कर सकता है। आत्महत्या जैसे उपाय पाप के कारण हैं, ऐसे कर्मों से भक्त कभी भी कृष्ण के चरण कमलों में शरण प्राप्त नहीं कर सकता। कृष्ण से वियोग की भावनाओं के कारण कभी कभी उन्नत भक्त अपना जीवन त्याग देना चाहता है, किंतु ऐसे प्रेम से कृष्ण का दर्शन होता है और उस समय वह शरीर त्याग नहीं पाता। जो व्यक्ति कृष्ण से प्रगाढ़ प्रेम करता है, वह उनके वियोग को सहन नहीं कर सकता। इसलिए ऐसा भक्त सदैव अपनी मृत्यु चाहता है। हे कमल नयन, शिव जी जैसे महापुरुष अज्ञान को भगाने के लिए आपके चरण कमलों की धूल में स्नान करने की इच्छा करते हैं। यदि मुझे आपकी कृपा प्राप्त नहीं होती, तो मैं अपनी आयु को कम करने के व्रत का पालन करूंगी, और यदि इस तरह आपकी कृपा मिल सकेगी, तो मैं सैकड़ों जन्मों तक शरीर त्यागती रहूंगी। हे प्रिय कृष्ण, आपने अपनी हंसी युक्त चितवन तथा मधुर बातों से हमारे हृदयों में काम वासना की अग्नि उत्पन्न कर दी है। अब आपको अपने होठों की अमृत धारा से हमें चूम कर इस अग्नि को बुझाना चाहिए। आप कृपा करके ऐसा करें, अन्यथा हे मित्र, आपके विरह के कारण हमारे हृदयों के भीतर की अग्नि हमारे शरीरों को क्षार कर देगी। इस तरह ध्यान द्वारा हम आपके चरण कमलों की शरण पा सकेंगी। श्री चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को कहा, तुम अपनी समस्त व्यर्थ की इच्छाएं छोड़ दो, क्योंकि वे कृष्ण के चरण कमलों की शरण पाने के लिए अनुपयुक्त हैं। तुम अपने आप को श्रवण तथा कीर्तन में लगाओ, तब तुम तुरंत ही बिना संशय के कृष्ण की शरण पा सकोगे। निम्न कुल में उत्पन्न व्यक्ति भगवान कृष्ण की भक्ति करने के लिए अयोग्य नहीं होता, न ही कोई व्यक्ति भक्ति के लिए इसलिए योग्य होता है कि वह कुलीन ब्राह्मण के परिवार में उत्पन्न हुआ है। जो भी भक्ति करता है वही महान है, जबकि अभक्त सदैव गर्हित एवं निंदनीय है। इसलिए भगवत भक्ति करने में किसी के जाति कुल इत्यादि का विचार नहीं होता। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण सदैव दीनों तथा दुखियारों के प्रति कृपालु रहते हैं, किंतु कुलीन विद्वान तथा धनी सदैव अपने पदों का गर्व करते हैं। भले ही कोई ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हो और बारहों ब्राह्मण गुणों से युक्त हो, किंतु इतना योग्य होते हुए भी यदि वह कमलनाभ भगवान कृष्ण के चरण कमलों में समर्पित नहीं होता तो वह उस चंडाल के समान भी नहीं है जिसने अपना मन वचन कर्म धन तथा प्राण भगवान की सेवा में अर्पित कर दिया है। मात्र ब्राह्मण कुल में जन्म लेना या ब्राह्मण गुणों से युक्त होना पर्याप्त नहीं है, मनुष्य का भगवत भक्त होना आवश्यक है। इस तरह यदि कोई चौपच या चंडाल भक्त है तो वह न केवल अपना अपितु अपने सारे परिवार का भी उद्धार करता है। जबकि एक ब्राह्मण जो भक्त नहीं है किंतु केवल ब्राह्मण योग्यताओं से युक्त है, अपने आप को भी शुद्ध नहीं कर सकता। अपने परिवार की तो बात ही जाने दें। भक्ति संपन्न करने की विधियों में 9 संस्तुत विधियां सर्वश्रेष्ठ हैं, क्योंकि इन विधियों में कृष्ण तथा उनके प्रति प्रेम प्रदान करने की महान शक्ति निहित है। भक्ति की 9 विधियों में से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है भगवान के पवित्र नाम का सदैव कीर्तन करना। यदि कोई 10 प्रकार के अपराधों से बचते हुए ऐसा करता है तो वह आसानी से भगवान के अमूल्य प्रेम को प्राप्त कर लेता है। यह सुनकर सनातन गोस्वामी को अत्यधिक आश्चर्य हुआ। वे समझ गए कि आत्महत्या करने का मेरा निर्णय श्री चैतन्य महाप्रभु को अच्छा नहीं लगा। सनातन गोस्वामी ने निष्कर्ष निकाला, भूत वर्तमान तथा भविष्य को जानने वाले श्री चैतन्य महाप्रभु ने मुझे आत्महत्या करने से मना किया है। तब वे महाप्रभु के चरणों पर गिर पड़े और उनसे इस तरह बोले, हे प्रभु, आप सर्वज्ञ कृपालु तथा स्वतंत्र परमेश्वर हैं। मैं तो कठपुतली की ही तरह जैसा आप चाहते हैं नाचता हूँ। मैं नीच कुल में जन्मा हूँ, निसंदेह मैं सबसे नीच हूँ। मैं घृणित हूँ क्योंकि मुझ में पापी व्यक्ति के सारे दुर्गुण हैं। यदि आप मुझे जीवित रखते हैं तो क्या लाभ होगा? श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, तुम्हारा शरीर मेरी संपत्ति है, तुम इसे पहले ही मुझको समर्पित कर चुके हो, इसलिए अब अपने शरीर पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। तुम दूसरे की संपत्ति को क्यों नष्ट करना चाहते हो? क्या तुम यह विचार नहीं कर सकते कि क्या उचित है और क्या अनुचित? तुम्हारा शरीर अनेक आवश्यक कार्य संपन्न कराने के लिए मेरा प्रमुख साधन है। तुम्हारे शरीर के द्वारा मैं अनेक कार्यों को पूरा करूंगा। तुम्हें भक्त भक्ति ईश्वर प्रेम वैष्णवों के कर्तव्य तथा वैष्णव के गुणों का निर्धारण करना होगा। तुम्हें कृष्ण भक्ति बतलानी होगी, कृष्ण प्रेम अनुशीलन के केंद्र स्थापित करने होंगे, लुप्त तीर्थ स्थलों का उद्धार करना होगा तथा लोगों को शिक्षा देनी होगी कि संन्यास किस तरह ग्रहण किया जाए। मथुरा वृंदावन मेरा अति प्रिय अपना धाम है। मैं कृष्ण भावना अमृत का प्रचार करने के लिए वहां अनेक कार्य करना चाहता हूँ। मैं अपनी माता के आदेश से जगन्नाथपुरी में रह रहा हूँ। अतएव मैं लोगों को धार्मिक सिद्धांतों के अनुसार रहना सिखाने के लिए मथुरा वृंदावन नहीं जा सकता। मुझे यह सारा कार्य तुम्हारे शरीर के माध्यम से कराना है, किंतु तुम इसे त्यागना चाहते हो, यह मैं कैसे सह सकता हूँ। उस समय सनातन गोस्वामी ने श्री चैतन्य महाप्रभु से कहा, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। आप अपने हृदय के भीतर जो गहन विचार करते हैं उन्हें कोई नहीं समझ सकता। कठपुतली जादूगर के निर्देशानुसार नाचती गाती है, किंतु यह नहीं जानती कि वह किस तरह नाच गा रही है। हे प्रभु, आप जिस तरह नचाते हैं मनुष्य उसी के अनुसार नाचता है, किंतु वह कैसे नाचता है और उसे कौन नचाता है वह यह नहीं जानता। तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने हरिदास ठाकुर से कहा, हे प्रिय हरिदास, जरा मेरी बात सुनो। यह भद्र पुरुष पराई संपत्ति को नष्ट करना चाहता है। जिसे पराया धन सौंपा जाता है वह न तो उसे वितरित करता है न ही अपने उपयोग में लाता है। इसलिए उससे कहो कि ऐसा अवैध कार्य न करे। हरिदास ठाकुर ने उत्तर दिया, हम अपनी क्षमताओं पर झूठे ही गर्व करते हैं। वस्तुतः हम आपके गहन विचारों को समझ नहीं सकते। जब तक आप हमें बताते नहीं तब तक हम न तो आपके अभिप्राय को समझ पाते हैं न ही यह कि किसके माध्यम से आप क्या कराना चाहते हैं। हे महोदय, क्योंकि आप जैसे महापुरुष ने सनातन गोस्वामी को स्वीकार कर लिया है, अतएव वह अत्यधिक भाग्यशाली है। उसके समान भाग्यशाली कोई दूसरा नहीं हो सकता। इस तरह श्री चैतन्य महाप्रभु ने हरिदास ठाकुर तथा सनातन गोस्वामी दोनों का आलिंगन किया और तब उठ खड़े हुए एवं दोपहर का कृत्य करने के लिए चले गए। हरिदास ठाकुर ने सनातन का आलिंगन करते हुए कहा, हे प्रिय सनातन, कोई भी व्यक्ति तुम्हारे सौभाग्य की सीमा नहीं पा सकता। श्री चैतन्य महाप्रभु ने तुम्हारे शरीर को अपना व्यक्तिगत धन मान लिया है, अतएव तुम्हारे सौभाग्य की कोई तुलना नहीं कर सकता। जो कुछ श्री चैतन्य महाप्रभु अपने निजी शरीर से नहीं कर सकते उसे वे तुम्हारे माध्यम से कराना चाहते हैं और वे इसे मथुरा में कराना चाहते हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हमसे जो भी कराना चाहते हैं वह सफलतापूर्वक संपन्न हो जाएगा। यह तुम्हारा महान सौभाग्य है, यह मेरा परिपक्व मत है। मैं श्री चैतन्य महाप्रभु की बातों से समझ सकता हूँ कि वे चाहते हैं कि तुम भक्ति के सिद्धांत तथा शास्त्र निर्णित विधि विधान पर ग्रंथ लिखो। मेरा शरीर श्री चैतन्य महाप्रभु की सेवा में काम न आ सका, इसलिए भारत भूमि में जन्म लेकर भी यह शरीर व्यर्थ रहा। सनातन गोस्वामी ने उत्तर दिया, हे हरिदास ठाकुर, आपके समान कौन है? आप श्री चैतन्य महाप्रभु के संगियों में से एक हैं, अतएव आप सर्वाधिक भाग्यवान हो। श्री चैतन्य महाप्रभु जिस उद्देश्य के लिए अवतार के रूप में आए हैं, वह भगवान के पवित्र नाम के कीर्तन की महत्ता का विस्तार करना है। अब वे इसे स्वयं करने के बदले आपके माध्यम से इसका विस्तार कर रहे हैं। हे महोदय, आप तो नित्य ही 3 लाख बार नाम का कीर्तन करते हो और हर एक को ऐसे कीर्तन की महत्ता के विषय में बतलाते हो। कुछ लोग बहुत अच्छा आचरण करते हैं, किंतु कृष्ण भावना अमृत संप्रदाय का प्रचार नहीं करते, जबकि अन्य लोग प्रचार करते हैं किंतु उचित रीति से आचरण नहीं करते। आप अपने निजी आचरण तथा अपने प्रचार द्वारा पवित्र नाम से संबंधित दोनों कार्यों को एक ही साथ करते हो, इसलिए आप सारे जगत के गुरु हो, क्योंकि आप जगत में सबसे उन्नत भक्त हो। इस तरह वे दोनों कृष्ण विषय कथाओं की चर्चा करते हुए अपना समय बिताते थे, अतः दोनों ने एक साथ जीवन का आनंद लिया। रथ यात्रा के समय बंगाल के सारे भक्त रथ उत्सव के दर्शन हेतु आए, जैसा कि वे पहले आए थे। रथ यात्रा उत्सव के समय श्री चैतन्य महाप्रभु पुनः जगन्नाथ जी के रथ के आगे आगे नाचे। जब सनातन गोस्वामी ने यह देखा तो उनका मन चकित हो गया। बंगाल से आए महाप्रभु के भक्त वर्षा ऋतु के 4 महीने जगन्नाथपुरी में रहे और श्री चैतन्य महाप्रभु ने उन सब से सनातन गोस्वामी का परिचय कराया। श्री चैतन्य महाप्रभु ने अद्वैत आचार्य, नित्यानंद प्रभु, श्रीवास ठाकुर, वक्रेश्वर पंडित, वासुदेव दत्त, मुरारी गुप्त, राघव पंडित, दामोदर पंडित, परमानंद पुरी, ब्रह्मानंद भारती, स्वरूप दामोदर, गदाधर पंडित, सार्वभौम भट्टाचार्य, रामानंद राय, जगदानंद पंडित, शंकर पंडित, काशीश्वर तथा गोविंद तथा अन्य चुने हुए भक्तों से सनातन गोस्वामी का परिचय कराया। महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी से समस्त भक्तों को उपयुक्त ढंग से नमस्कार करने को कहा। इस तरह उन्होंने उन सब से सनातन गोस्वामी का परिचय उनकी कृपा का पात्र बनाने के उद्देश्य से कराया। सनातन गोस्वामी अपने पांडित्य तथा उत्तम गुणों के कारण हर एक को प्रिय थे, इसलिए उन लोगों ने उन्हें योग्यता के अनुसार कृपा, मित्रता तथा सम्मान प्रदान किया। जब रथ यात्रा उत्सव के बाद अन्य सारे भक्त बंगाल लौट गए, तो सनातन गोस्वामी श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों के संरक्षण में रहते रहे। सनातन गोस्वामी ने श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ डोल यात्रा उत्सव देखा। इस तरह महाप्रभु की संगति में उनका आनंद बढ़ता गया। सनातन गोस्वामी श्री चैतन्य महाप्रभु को मिलने जगन्नाथपुरी में अप्रैल मई के महीने में आए थे और श्री चैतन्य महाप्रभु ने मई जून के महीने में उनकी परीक्षा ली थी। मई जून माह में श्री चैतन्य महाप्रभु यमेश्वर शिवजी के उद्यान में आए और वहां पर भक्तों के अनुरोध पर प्रसाद ग्रहण किया। दोपहर में जब भोजन का समय हुआ तो महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को बुलाया, जिनका सुख इस बुलावे के कारण बढ़ गया। दोपहर के समय समुद्र तट की बालू आग के समान झुलस रही थी, किंतु सनातन गोस्वामी उसी रास्ते से आए। महाप्रभु द्वारा बुलाए जाने के हर्ष से अभिभूत सनातन गोस्वामी को यह अनुभव नहीं हुआ कि उनके पांव गरम बालू से जले जा रहे हैं। यद्यपि गर्मी के कारण उनके दोनों पांवों के तलवों में फफोले पड़ गए थे, तो भी वे श्री चैतन्य महाप्रभु के पास गए। वहां उन्होंने महाप्रभु को भोजन के बाद विश्राम करते पाया। गोविंद ने सनातन गोस्वामी को महाप्रभु के भोजन का अवशेष पात्र प्रदान किया। प्रसाद पाने के बाद सनातन गोस्वामी श्री चैतन्य महाप्रभु के पास गए। जब महाप्रभु ने पूछा, तुम किस मार्ग से होकर आए हो, तो सनातन गोस्वामी ने उत्तर दिया, मैं समुद्र तट के मार्ग से आया हूँ। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, तुम समुद्र किनारे से होकर कैसे आए, जहाँ की बालू इतनी गर्म है? तुम सिंह द्वार के सामने के मार्ग से क्यों नहीं आए, वह अत्यंत शीतल है। गरम बालू ने तुम्हारे तलवों में फफोले उत्पन्न कर दिए होंगे, अब तुम चल नहीं सकते, तुमने इसे कैसे सहन किया? सनातन गोस्वामी ने उत्तर दिया, मुझे न तो अधिक पीड़ा का अनुभव हुआ, न ही मैं यह जान पाया कि तपिश के कारण फफोले पड़े हैं। सिंह द्वार के निकट से जाने का मुझे अधिकार नहीं है, क्योंकि वहां जगन्नाथ जी के सेवक सदा आते जाते रहते हैं। वहां सेवक निरंतर आते जाते रहते हैं, यदि मैं उन्हें छू लेता तो मेरा सर्वनाश हो जाता। इन सब बातों को सुनकर श्री चैतन्य महाप्रभु अत्यंत प्रसन्न हुए और इस तरह बोले, हे प्रिय सनातन, यद्यपि तुम सारे ब्रह्मांड के उद्धारक हो और देवता तथा बड़े बड़े संत तक तुम्हारे स्पर्श से शुद्ध बन जाते हैं, किंतु वैष्णव शिष्टाचार का पालन और रक्षण करना भक्त का गुण है। वैष्णव शिष्टाचार को बनाए रखना भक्त का आभूषण है। यदि कोई व्यक्ति शिष्टाचार के नियमों का उल्लंघन करता है तो लोग उसकी हंसी उड़ाते हैं और इस तरह वह इहलोक तथा परलोक दोनों में विनष्ट हो जाता है। तुमने शिष्टाचार का पालन करके मेरे मन को तुष्ट किया है, तुम्हारे अतिरिक्त इस उदाहरण को कौन दिखलाएगा? यह कहकर श्री चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी का आलिंगन किया। सनातन के शरीर के कुजली के घावों से रिसने वाली पस महाप्रभु के शरीर में लग गई। यद्यपि सनातन गोस्वामी ने श्री चैतन्य महाप्रभु को आलिंगन करने से बार बार मना किया, किंतु महाप्रभु ने फिर भी वही किया। अतः उनके शरीर पर सनातन के शरीर से निकली पस का लेप हो गया। इससे सनातन गोस्वामी अत्यधिक दुखी हुए। इस तरह सेवक तथा स्वामी अपने अपने घर चले गए। अगले दिन जगदानंद पंडित सनातन गोस्वामी से मिलने गए। जब जगदानंद पंडित तथा सनातन गोस्वामी एक साथ बैठ गए और कृष्ण विषयक कथाएं चलाने लगे, तो सनातन गोस्वामी ने जगदानंद पंडित से अपना दुख कह सुनाया। यहाँ मैं श्री चैतन्य महाप्रभु के दर्शन करके अपना दुख कम करने आया था, किंतु महाप्रभु ने मुझे वह नहीं करने दिया जो मेरे मन में था। यद्यपि मैं उन्हें ऐसा करने से मना करता हूँ, तो भी श्री चैतन्य महाप्रभु मेरा आलिंगन करते हैं, जिससे उनके शरीर पर मेरी खुजली के घावों से निकली पस का लेप हो जाता है। इस तरह मैं उनके चरण कमलों पर अपराध कर रहा हूँ, जिसके कारण निश्चय ही मेरा उद्धार नहीं होगा। साथ ही मैं भगवान जगन्नाथ के दर्शन भी नहीं कर सकता। यही मेरा महान दुख है। मैं तो यहाँ अपने लाभ के लिए आया था, किंतु मैं अब देखता हूँ कि मुझे ठीक उसका विपरीत मिल रहा है। मैं नहीं जानता, न ही मैं निश्चित कर सकता हूँ कि मुझे किस तरह लाभ होगा। जगदानंद पंडित ने कहा, तुम्हारे रहने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त स्थान वृंदावन है। तुम रथ यात्रा उत्सव का दर्शन करने के बाद वहां लौट सकते हो। महाप्रभु ने पहले ही तुम दोनों भाइयों को आदेश दे दिया है कि वृंदावन में जाकर रहो, वहां तुम्हें सारा सुख मिलेगा। यहां आने का तुम्हारा उद्देश्य पूरा हो चुका है, क्योंकि तुम महाप्रभु के चरण कमलों का दर्शन कर चुके हो। इसलिए रथ यात्रा में रथ पर जगन्नाथ जी के दर्शन करने के बाद तुम जा सकते हो। सनातन गोस्वामी ने उत्तर दिया, आपने मुझे बहुत अच्छा परामर्श दिया है। मैं वहां अवश्य जाऊंगा, क्योंकि उसी स्थान को महाप्रभु ने मेरे रहने के लिए दिया है। इस तरह बातें करके सनातन गोस्वामी तथा जगदानंद पंडित अपने अपने कार्यों पर लौट गए। अगले दिन श्री चैतन्य महाप्रभु हरिदास तथा सनातन गोस्वामी से मिलने गए। हरिदास ठाकुर ने श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों पर नमस्कार किया और महाप्रभु ने प्रेमावेश में उनका आलिंगन किया। सनातन गोस्वामी ने दूर ही से नमस्कार तथा दंडवत किया, किंतु श्री चैतन्य महाप्रभु ने उनको आलिंगन करने के लिए बारंबार पास बुलाया। अपराध करने के भय से सनातन गोस्वामी श्री चैतन्य महाप्रभु से मिलने आगे नहीं आए, किंतु महाप्रभु उनसे मिलने आगे बढ़े। सनातन गोस्वामी पीछे हट गए, किंतु श्री चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें बलपूर्वक पकड़ लिया और उनका आलिंगन कर लिया। महाप्रभु दोनों को अपने साथ लेकर एक पवित्र स्थान पर बैठ गए। तब वैराग्य में उन्नत सनातन गोस्वामी बोलने लगे। उन्होंने कहा, मैं तो यहाँ अपने लाभ के लिए आया था, किंतु मैं देखता हूँ कि उसका उल्टा हो रहा है। मैं सेवा के लिए अयोग्य हूँ। मैं दिन प्रतिदिन अपराध ही करता हूँ। मैं स्वभाव से निम्न जन्मा हूँ। मैं पाप कर्मों का प्रदूषित जलाशय हूँ। यदि आप मुझे छूते हैं तो वह मेरे लिए और भी बड़ा अपराध होगा। इस पर मेरे शरीर के खाज के घावों से जो खून बह रहा है आपके शरीर को लगता है, फिर भी आप मुझे बलपूर्वक छूते हैं। हे महोदय, मेरा शरीर भयावह स्थिति में है, फिर भी उसका स्पर्श करने में आपको तनिक भी घृणा नहीं होती। इस अपराध के कारण मेरे लिए प्रत्येक मंगल समाप्त हो जाएगा। इसलिए मैं देखता हूँ कि यहाँ रुककर मैं कोई भी मंगल नहीं कर पाऊंगा। कृपया मुझे रथ यात्रा उत्सव के बाद वृंदावन लौट जाने की अनुमति का आदेश दें। मैंने जगदानंद पंडित से उनका मत जानने के लिए परामर्श किया है और उन्होंने भी वृंदावन लौट जाने का परामर्श दिया है। यह सुनकर क्रुद्ध होकर श्री चैतन्य महाप्रभु जगदानंद पंडित की भर्त्सना करने लगे। जगदानंद पंडित अभी केवल छोकरा है, किंतु वह इतना गर्वीला हो गया है कि अपने आप को तुम जैसे व्यक्ति को उपदेश देने के लिए सक्षम मानता है। आध्यात्मिक उन्नति के मामले में तथा सामान्य व्यवहार में भी तुम उसके गुरु तुल्य हो, फिर भी वह अपने मूल्य को न जानते हुए तुम्हें परामर्श देने का दुस्साहस करता है। हे प्रिय सनातन, तुम तो मेरे सलाहकार जैसे हो, क्योंकि तुम प्रामाणिक व्यक्ति हो, किंतु जगा तुमको उपदेश देना चाहता है। यह तो एक शरारती बालक की दृष्टता ही है। जब श्री चैतन्य महाप्रभु इस तरह जगदानंद पंडित को डांट रहे थे तो सनातन गोस्वामी महाप्रभु के चरणों पर गिर पड़े और बोले, मैं अब जगदानंद के सौभाग्य को समझ पाया। मैं अपने दुर्भाग्य को भी समझ गया। इस जगत में जगदानंद के समान भाग्यशाली कोई नहीं है। आप तो जगदानंद को स्नेहमय संबंधों का अमृत पिला रहे हैं और मेरी गौरव स्तुति करके आप मुझे नीम तथा निशिंदा का कटु रस पिला रहे हैं। यह मेरा दुर्भाग्य है कि आपने मुझे अपने आत्मीय जन के रूप में स्वीकार नहीं किया, किंतु आप पूर्णतया स्वतंत्र पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। यह सुनकर श्री चैतन्य महाप्रभु कुछ लज्जित हुए। सनातन गोस्वामी को तुष्ट करने के उद्देश्य से उन्होंने निम्नलिखित शब्द कहे, हे प्रिय सनातन, तुम यह मत सोचना कि जगदानंद मुझे तुमसे अधिक प्रिय है, किंतु मैं आदर्श शिष्टाचार का अतिक्रमण सहन नहीं कर सकता। तुम शास्त्रों के अनुभवी विद्वान हो, जबकि जगह केवल एक युवा बालक है। तुम में मुझ तक को प्रभावित करने की शक्ति है। तुम पहले ही कई स्थानों पर मुझे अपने सामान्य व्यवहार तथा भक्ति के विषय में समझा चुके हो। जगह का तुम्हें उपदेश देना मुझे असहाय है, इसलिए मैं उसकी भर्त्सना कर रहा हूँ। मैं तुम्हारी प्रशंसा इसलिए नहीं करता क्योंकि मैं तुम्हें अपने घनिष्ठ संबंधों से बाहर मानता हूँ, अपितु इसलिए कि तुम वास्तव में इतने योग्य हो कि लोगों को तुम्हारे गुणों की प्रशंसा करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। यद्यपि एक व्यक्ति का कई व्यक्तियों से स्नेह होता है, किंतु उनके निजी संबंधों के स्वभाव के अनुसार विभिन्न प्रकार के प्रेमों का उदय होता है। तुम अपने शरीर को विभत्स मानते हो, किंतु मैं सोचता हूँ कि तुम्हारा शरीर अमृत के समान है। वस्तुतः तुम्हारा शरीर दिव्य है, भौतिक नहीं है, किंतु तुम इसे भौतिक बुद्धि से सोच रहे हो। यदि तुम्हारा शरीर भौतिक होता तो भी मैं उसकी उपेक्षा न कर पाता, क्योंकि भौतिक शरीर को न तो अच्छा मानना चाहिए न बुरा। कृष्ण से संबंध न रखने वाली जिस भी वस्तु की अनुभूति की जाती हो उसे माया समझना चाहिए। शब्दों द्वारा उच्चारित या मन में अनुभव किए गए एक भी ब्रह्म यथार्थ नहीं होते। क्योंकि ब्रह्म यथार्थ नहीं होता, इसलिए जिसे हम बुरा सोचते हैं और जिसे अच्छा सोचते हैं उनमें कोई अंतर नहीं होता। जब हम परम सत्य की बात करते हैं तो ऐसी कल्पनाएं लागू नहीं होती। भौतिक जगत में अच्छे बुरे की कल्पनाएं मन की उपज होती हैं। इसलिए यह कहना कि यह अच्छा है और यह बुरा है कोरी भूल है। विनम्र साधु पुरुष वास्तविक ज्ञान के बल पर विद्वान तथा विनीत ब्राह्मण गाय हाथी कुत्ते तथा चंडाल को सम दृष्टि से देखते हैं। जो व्यक्ति जीवन में अर्जित ज्ञान तथा उसके उपयोग से पूर्णतया संतुष्ट रहता है और अपने आध्यात्मिक पद पर स्थिर होता है, जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को पूरी तरह वश में रखता है और जो व्यक्ति कंकर पत्थर तथा सोने को एक सा देखता है वह पूर्ण योगी कहलाता है। क्योंकि मैं सन्यासी हूँ इसलिए मेरा धर्म भेदभाव करना नहीं अपितु समदृष्टि रखने का है। मेरा ज्ञान चंदन तथा कीचड़ में समदृष्टि रखता है। इस कारण मैं तुम्हारा त्याग नहीं कर सकता। यदि मैं तुमसे घृणा करूंगा तो मैं अपने वृत्ति परक धर्म से विचलित हो जाऊंगा। हरिदास ने कहा, हे प्रभु, आपने जो कुछ कहा है वह बाह्य औपचारिकता है, मैं इसे स्वीकार नहीं करता। हे प्रभु, हम सब पतित हैं, किंतु आपने पतितों पर दयालु होने के अपने गुण के कारण हमें स्वीकार किया है। यह जगत विख्यात है। श्री चैतन्य महाप्रभु हंसे और बोले,
हे हरिदास, हे सनातन, सुनो, अब मैं तुमसे सच कह रहा हूँ कि मेरा मन तुम लोगों से किस तरह अनुरक्त है। हे हरिदास तथा सनातन, मैं तुम दोनों को अपने बच्चों जैसा मानता हूँ, जिनका पालन मेरे द्वारा होना है। पालक कभी भी पालितों के दोषों पर गंभीरता से विचार नहीं करता। मैं अपने आप को आदर के अयोग्य समझता हूँ, किंतु स्नेह के कारण मैं तुम लोगों को अपने बच्चों के समान मानता हूँ। जब बालक मल मूत्र कर देता है तो वह माता के शरीर में लग जाता है, किंतु माता कभी भी बच्चे से घृणा नहीं करती, उल्टे उसे धोने में वह अपार आनंद पाती है। माता को पाले जाने वाले बालक का मल मूत्र चंदन लेप के समान प्रतीत होता है। इसी तरह जब सनातन गोस्वामी के गांवों से रिसने वाला दुर्गंध युक्त द्रव्य मेरे शरीर में छू जाता है तो मुझे उससे घृणा नहीं होती। हरिदास ठाकुर ने कहा, हे महोदय, आप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं और हमारे प्रति अत्यंत कृपालु हैं। कोई नहीं जान सकता कि आपके अगाध स्नेहिल हृदय में क्या है। आपने वासुदेव कोड़ी का आलिंगन किया, जिसका शरीर पूरी तरह कीड़ों से भरा था। आप इतने दयालु हैं कि उसकी ऐसी दशा होते हुए भी आपने उसका आलिंगन किया। आपने उसका आलिंगन करके उसके शरीर को कामदेव का सा सुंदर बना दिया। हम आपकी कृपा की तरंगों को समझ नहीं सकते। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, एक भक्त का शरीर कभी भी भौतिक नहीं होता, वह दिव्य आध्यात्मिक आनंद से पूर्ण माना जाता है। दीक्षा के समय जब भक्त अपने आप को भगवान की सेवा में पूर्णतया समर्पित कर देता है, तब कृष्ण उसे अपने समान ही उत्तम स्वीकार कर लेते हैं। जब भक्त का शरीर इस तरह आध्यात्मिक बन जाता है तो भक्त उस दिव्य शरीर से भगवान के चरण कमलों की सेवा करता है। जब जन्म मृत्यु को प्राप्त होने वाला जीव मेरा आदेश पूरा करने के लिए अपना जीवन मुझे समर्पित करते हुए सारे भौतिक कार्यों को त्याग देता है और इस तरह मेरे आदेशों के अनुसार कर्म करता है, उस समय वह अमरता के पद तक पहुंच जाता है। तब वह मेरे साथ प्रेम रस के आदान प्रदान में आध्यात्मिक आनंद लूटने के योग्य बन जाता है। कृष्ण ने किसी प्रकार सनातन गोस्वामी के शरीर में खुजली के घाव प्रकट कर दिए हैं और मेरी परीक्षा लेने के लिए उसे यहाँ भेज दिया है। यदि मैंने सनातन गोस्वामी से घृणा की होती और उसका आलिंगन न किया होता तो निश्चय ही कृष्ण के प्रति अपराध के लिए मैं दंडित होता। सनातन गोस्वामी कृष्ण के संगियों में से एक हैं। उसके शरीर से कोई दुर्गंध नहीं आ सकती। पहले दिन जब मैंने उनका आलिंगन किया तो मुझे चतुहतम चंदन, कपूर, अगरू तथा कस्तूरी के मिश्रण की सुगंधी आई। वस्तुतः
जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी का आलिंगन किया तो महाप्रभु के स्पर्श मात्र से चंदन लेप के ही समान सुगंध प्रकट हुई। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, हे प्रिय सनातन, दुखी मत हो, क्योंकि जब मैं तुम्हारा आलिंगन करता हूं तब वास्तव में मुझे महान सुख मिलता है। तुम मेरे साथ जगन्नाथपुरी में एक वर्ष तक रहो, उसके बाद मैं तुम्हें वृंदावन भेज दूंगा। यह कहकर श्री चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी का पुनः आलिंगन किया। इस तरह सनातन के छाले तुरंत लुप्त हो गए और उनका सारा शरीर सोने के रंग जैसा हो गया। यह परिवर्तन देखकर अत्यधिक आश्चर्यचकित हुए हरिदास ठाकुर ने महाप्रभु से कहा, यह आपकी लीला है। हे प्रभु, आपने सनातन गोस्वामी को जारी खंड जल पीने को बाध्य किया और वास्तव में उनके शरीर में खुजली के घाव आपने ही उत्पन्न किए। इन खुजली के घावों को इस तरह उत्पन्न करके आपने सनातन गोस्वामी की परीक्षा ली। आपकी दिव्य लीलाओं को कोई भी नहीं समझ सकता। हरिदास ठाकुर तथा सनातन गोस्वामी दोनों का आलिंगन करने के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु अपने स्थान पर लौट गए। तब हरिदास ठाकुर तथा सनातन गोस्वामी ने भाव विभोर होकर महाप्रभु के दिव्य गुणों का वर्णन करना शुरू किया। इस तरह सनातन गोस्वामी श्री चैतन्य महाप्रभु के संरक्षण में रहे और हरिदास ठाकुर के साथ श्री चैतन्य महाप्रभु के दिव्य गुणों की चर्चा करते रहे। दोल यात्रा उत्सव देखने के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को वृंदावन में जो कुछ करना था उसका पूरी तरह आदेश देकर उन्हें विदा किया। जब सनातन गोस्वामी तथा श्री चैतन्य महाप्रभु ने एक दूसरे से विदा ली तो जो विरह दृश्य उपस्थित हुआ उसका यहाँ पर वर्णन नहीं किया जा सकता। सनातन गोस्वामी ने उसी जंगल के मार्ग से होकर वृंदावन जाने का निश्चय किया जिससे होकर महाप्रभु गए थे। सनातन गोस्वामी ने बलभद्र भट्टाचार्य से पूछकर उन सारे गांवों, नदियों तथा पर्वतों का नाम लिख लिया जहां जहां श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपनी लीलाएं संपन्न की थी। सनातन गोस्वामी श्री चैतन्य महाप्रभु के सारे भक्तों से मिले और तब उन्होंने उसी रास्ते से यात्रा करके उन स्थानों को देखा जिनसे होकर श्री चैतन्य महाप्रभु गुजरे थे। जब भी सनातन गोस्वामी ऐसे किसी स्थान को देखते जहां श्री चैतन्य महाप्रभु ने मार्ग में अपनी लीलाएं की थी तब वे तुरंत ही प्रेमावेश से पूरित हो जाते। इस तरह सनातन गोस्वामी वृंदावन पहुंचे। बाद में रूप गोस्वामी आए और उनसे मिले। श्रील रूप गोस्वामी को बंगाल में एक वर्ष का विलंब हो गया क्योंकि वे अपना धन अपने संबंधियों को बांट रहे थे और उन्हें उनकी समुचित स्थितियों में स्थापित कर रहे थे। उन्होंने बंगाल में जो भी धन संग्रह किया था उसे एकत्र किया और उसे अपने संबंधियों ब्राह्मणों तथा मंदिरों में बांट दिया। इस तरह उनके मन में जितने कार्य थे उन्हें संपन्न करके वे पूर्णतया तुष्ट होकर वृंदावन लौट आए। दोनों भाई वृंदावन में मिले जहां वे श्री चैतन्य महाप्रभु की इच्छा को पूरी करने के लिए रहे। श्रील रूप गोस्वामी तथा सनातन गोस्वामी ने अनेक प्रामाणिक शास्त्र एकत्र किए और इन शास्त्रों के साक्ष्य के आधार पर समस्त लुप्त तीर्थ स्थलों का पुनरुद्धार किया। इस तरह उन्होंने भगवान कृष्ण की पूजा हेतु मंदिरों की स्थापना की। श्रील सनातन गोस्वामी ने बृहद भागवता अमृत का संकलन किया। इस पुस्तक के द्वारा यह जाना जा सकता है कि कौन भक्त है, भक्ति की विधि क्या है और परम सत्य कृष्ण कौन है। श्रील सनातन गोस्वामी ने दशम स्कंद का भाष्य दशम टिप्पणी के नाम से लिखा, जिससे हम भगवान कृष्ण की दिव्य लीलाओं तथा प्रेमावेश को समझ सकते हैं। उन्होंने हरि भक्ति विलास का भी संकलन किया, जिससे हम भक्त के आदर्श आचरण को तथा वैष्णव के कर्तव्य की पूरी सीमा को समझ सकते हैं। श्रील सनातन गोस्वामी ने अन्य कई ग्रंथ भी संकलित किए हैं, उनकी गणना कौन कर सकता है। इन ग्रंथों का मूलभूत सिद्धांत हम सबको यह बतलाना है कि मदन मोहन तथा गोविंद जी से किस तरह प्रेम किया जाए। श्रील रूप गोस्वामी ने भी कई ग्रंथ लिखे, जिनमें से सर्वाधिक विख्यात है भक्ति रसामृत सिंधु। इस ग्रंथ से कृष्ण भक्ति के साथ तथा ऐसी सेवा से प्राप्त होने वाले दिव्य रस को समझा जा सकता है। श्रील रूप गोस्वामी ने उज्जवल नील मणि नामक ग्रंथ का भी संकलन किया, जिससे हम श्री राधा कृष्ण के प्रेम व्यवहार की पराकाष्ठा को समझ सकते हैं। श्रील रूप गोस्वामी ने दो महत्वपूर्ण नाटक भी लिखे, जिनके नाम विदग्ध माधव तथा ललित माधव हैं, जिनसे कृष्ण की लीलाओं से प्राप्य समस्त रसों को समझा जा सकता है। श्रील रूप गोस्वामी ने दान केली कौमुदी ग्रंथ से प्रारंभ करके 100,000 श्लोकों की रचना की। इन शास्त्रों में उन्होंने वृंदावन लीलाओं के दिव्य रसों की विस्तार से व्याख्या की है। श्रील रूप गोस्वामी के छोटे भाई श्री वल्लभ या अनुपम के पुत्र बहुत बड़े विद्वान थे, जिनका नाम श्रील जीव गोस्वामी था। श्रील जीव गोस्वामी अपना सर्वस्व त्याग कर वृंदावन आए। बाद में उन्होंने भी भक्ति विषयक अनेक पुस्तकें लिखी और प्रचार कार्य को बढ़ाया। श्रील जीव गोस्वामी ने विशेष रूप से भागवत संदर्भ या छठ संदर्भ ग्रंथ की रचना की, जो समस्त शास्त्रों का निचोड़ है। इस ग्रंथ से भक्ति तथा भगवान के विषय में निर्णायक ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। उन्होंने गोपाल चंपू नामक ग्रंथ भी लिखा, जो समस्त वैदिक साहित्य का सार है।
इस ग्रंथ में उन्होंने राधा कृष्ण के प्रेम के आदान प्रदान तथा वृंदावन लीलाओं को प्रदर्शित किया है। षट संदर्भ में श्रील जीव गोस्वामी ने कृष्ण प्रेम विषयक सत्य को प्रकट किया है। इस तरह उनके सारे ग्रंथों का विस्तार 400,000 श्लोकों में हुआ है। जब जीव गोस्वामी की इच्छा बंगाल से मथुरा जाने की हुई तो उन्होंने श्रील नित्यानंद प्रभु से अनुमति मांगी। जीव गोस्वामी का रूप गोस्वामी तथा सनातन गोस्वामी से, जो कि श्री चैतन्य महाप्रभु के अति कृपा पात्र थे, संबंध होने के कारण श्री नित्यानंद प्रभु ने श्रील जीव गोस्वामी के सिर पर अपने चरण रखे और उनका आलिंगन किया। श्री नित्यानंद प्रभु ने आज्ञा दी, हाँ तुम शीघ्र वृंदावन जाओ। वह स्थान श्री चैतन्य महाप्रभु ने तुम्हारे परिवार को, तुम्हारे पिता तथा चाचाओं को दिया है, इसलिए तुम वहां शीघ्र जाओ। श्री नित्यानंद प्रभु की आज्ञा से वे वृंदावन गए और सचमुच ही उन्होंने उनकी आज्ञा का फल प्राप्त किया, क्योंकि उन्होंने दीर्घ काल तक अनेक पुस्तकों की रचना की और वृंदावन से भक्ति संप्रदाय का प्रचार किया। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी तथा जीव गोस्वामी, ये तीनों तथा रघुनाथ दास गोस्वामी भी उसी तरह से मेरे गुरु हैं, इसलिए मैं उनके चरण कमलों की वंदना करता हूँ, क्योंकि मैं उनका दास हूँ। इस तरह मैंने महाप्रभु की सनातन गोस्वामी से पुनः भेंट का वर्णन किया है। इसे सुनकर मैं महाप्रभु की इच्छा समझ सकता हूँ। श्री चैतन्य महाप्रभु के ये गुण गन्ने के समान हैं, जिससे इसे चूसने वाले को दिव्य रस का स्वाद मिलता है। श्रील रूप तथा श्री रघुनाथ के चरण कमलों की वंदना करते हुए, सदैव उनकी कृपा की कामना करते हुए, मैं कृष्णदास उनके चरण चिन्हों पर चलकर श्री चैतन्य चरिता अमृत का वर्णन कर रहा हूँ। इस प्रकार श्री चैतन्य चरिता अमृत अंत्य लीला के अंतर्गत जगन्नाथपुरी में चैतन्य महाप्रभु से सनातन गोस्वामी की भेंट शीर्षक चतुर्थ अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे।